नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 22 और श्लोक 20 से 25 तक श्लोक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी। वीर युथाग्रणीय न रामोपि युधितोषितः शांतनोर्दासकन्यायां जग्गे चित्रांगदः सुतः विचित्रवीर्य चावरजो नामना चित्रांगदो हतः यस्यां पराशरात् साक्षाद् अवतीर्णो हरे कला वेदगुप्तो मुनिः कृष्णो यदोहमिदमध्यगाम हित्वा स्वशिष्यान् पैलादीन भगवान् बादरायणः मह्यं पुत्राय शांताय परम गुह्यमिदं जगौ विचित्रवीर्योऽथो वाह काशीराजसुते बलात् स्वयं वरादुपानीते अंबिकां बालिके उभे तयोरासक्त हृदयो गृहीतो यक्ष्मणामृतः क्षेत्रे प्रजस्य वै भ्रातुर् मात्रोक्तो बादरायणः धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत्। एक एक श्लोक पढ़िए।
Thank you.
ठीक है, चलिए बोलिए। 21 नंबर श्लोक से मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ। विचित्र वीर्य शांतनु पुत्र विचित्र वीर्य च तथा अवरज छोटा भाई नामना नामक चित्रांगद चित्रांगद नामक गंधर्व द्वारा हतः मारा गया। यश्याम शांतनु से विवाह होने के पूर्व सत्यवती के गर्भ में पराशरात पराशर मुनि के वीर्य से साक्षात प्रत्यक्ष अवतीर्ण अवतार लेकर हरे हे भगवान का कला अंश वेद गुप्त वेदों का रक्षक मुनि ही मुनि कृष्ण कृष्ण द्वैपायन यतः जिससे अहम मैंने सुखदेव गोस्वामी इदम इस श्रीमद् भागवत को अध्यगाम गहन अध्ययन किया हित्वा त्याग कर स्वशिष्यान अपने शिष्यों को पैल आदिन पैल इत्यादि को भगवान भगवान का अवतार वादरायण व्यास देव ने महियम मुझ पुत्राय पुत्र को शांताय इंद्रिय तृप्ति को दमन करने वाले परम परम गुह्यम अत्यंत गोपनीय इदम इस वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत को जगौ उपदेश दिया। विचित्र वीर्य विचित्र वीर्य ने अथ तत्पश्चात उवाह ब्याहली काशीराज सुते काशीराज की दो कन्याएं बलात् बलपूर्वक स्वयं बरात स्वयंवर स्थल से उपानीते लाई जाकर अंबिका अंबालिके अंबिका तथा अंबालिका उभे दोनों तयोः उनके प्रति आसक्त अनुरक्त हृदय गृहीत कलुषित यक्ष्मणा यक्ष्मा तपेदिक से मृतः मर गया। इसके बाद क्या श्लोक का अर्थ है? क्षेत्रे पत्नियों तथा दासियों में अप्रजस्य निःसंतान विचित्र वीर्य की वही निसंदेह भ्रातु भाई की मात्रा उक्त माता के आदेश से बादरायण वेद व्यास ने धृतराष्ट्रम धृतराष्ट्र को च तथा पांडुम पांडु को च भी विदुरम विदुर को च भी अपि निसंदेह अजीजनत उत्पन्न किया। इसका अर्थ इस प्रकार है, चित्रांगद जिसका छोटा भाई विचित्र वीर्य था, चित्रांगद नाम के ही गंधर्व द्वारा मारा गया। सत्यवती ने संतनु से विवाह होने के पूर्व वेदों के ज्ञाता व्यास देव को जन्म दिया था, ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए और पराशर मुनि के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। व्यास देव से मैं सुखदेव गोस्वामी उत्पन्न हुआ और मैंने उनसे इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। भगवान के अवतार वेदव्यास ने पहले इत्यादि अपने शिष्यों को छोड़कर मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ाया, क्योंकि मैं सभी वैदिक कामनाओं से मुक्त था। जब काशीराज की दो कन्याओं अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक अपहरण हो गया तो विचित्रवीर ने उनसे विवाह कर लिया, किंतु इन दोनों पत्नियों से अत्यधिक आसक्त रहने के कारण उसे तपेदिक हो गया, जिससे वह मर गया। बदरायन श्री व्यासदेव ने अपनी माता सत्यवती के आदेशानुसार तीन पुत्र उत्पन्न किए। दो पुत्र अपने भाई विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका तथा अंबालिका के गर्भ से और तीसरा विचित्रवीर्य की दासी से। तीनों पुत्रों के नाम थे धृतराष्ट्र, पांडव तथा बेदोर। प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, विचित्रवीर्य की मृत्यु तपेदिक से हो गई और उसकी पत्नियों अंबिका तथा अंबालिका से कोई संतान न थी, अतः विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उसकी माता सत्यवती ने, जो कि व्यासदेव की भी माता थी, व्यासदेव से कहा कि वह विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करे। उन दिनों पति का भाई देवर अपनी भाभी से संतान उत्पन्न कर सकता था, यह देव रेण सुतोत्पत्ति कहलाती थी। यदि किसी कारणवश पति संतान उत्पन्न करने में अक्षम होता था तो उसका भाई अपनी भाभी से संतान उत्पन्न कर सकता। कलयुग में यह देवरेण सुतोत्पत्ति तथा अश्वमेध और गोमेध यज्ञ वर्जित है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। इस कलयुग में पांच कार्य करने की मनाही है, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस की भेंट चढ़ाना तथा देवर द्वारा भाभी से संतान उत्पत्ति। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में बात कही गई है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आप लोग विगत दिनों से इस प्रसंग को सुन रहे हैं। ये कथा नवम स्कंध की है, सभी लोगों को मालूम है, और नवम स्कंध में दो वंश का वर्णन किया गया है, सूर्य वंश और चंद्र वंश, और इसमें वंश परंपरा गिनाई गई है। तो अभी जो कथा हम लोग सुन रहे हैं, इसमें भीष्म पितामह के महिमा को बताया गया कि भीष्म पितामह कितने बड़े योद्धा हैं। बहुत बड़े योद्धा थे भीष्म पितामह जी, उनके जैसा बलवान होना मुश्किल है। 20वें नंबर के श्लोक में शब्द आया है वीर युथा गृणी एन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर के श्लोक में वीर युथा गृणी एन, एन एन माने भीष्मेण, ये भीष्म के लिए कहा गया है। भीष्म के द्वारा उनके गुरु महाराज जो परशुराम जी हैं उनको हराया गया, पराजित किया गया। कि इसके टीका में लिख रहे हैं कि ये न भीष्मेण अत्र चेयम कथानुसंधेया यथा भीष्मेण काशी राजस्यम विकाम बालिके वेति। इसलिए परशुराम जी के साथ में और भीष्म पितामह के साथ में युद्ध हुआ था कि भीष्म पितामह जी एक बार काशी राज के यहाँ गए थे। काशी राज के तीन कन्याएं हैं, अम्बा, अम्बिके और अम्बालिका। तो तीनों के लिए स्वयंवर किया गया था और उस समय भीष्म पितामह जी वहाँ गए, तो उनको देख करके स्वयंवर में जब भीष्म पितामह जी पहुँचे तो उनको देख करके सभी लड़कियाँ आश्चर्यचकित होकर के देख रही हैं कि बूढ़ा इस उत्सव में क्यों आ गया। देख करके वो लोग आश्चर्यचकित हो गई और जितने राजा लोग बैठे हुए थे, एक से एक राजा बैठे थे, तो सभी राजा लोग भी देख करके हंसने लगे। सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग हंसते हुए कहते हैं कि यह भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन यहां कैसे आ गए। आपस में सब हंस रहे हैं, तो भीष्म पितामह को अब रहा नहीं गया। और भीष्म पितामह क्या किए कि बलात् बल से उन तीनों कन्याओं को, सभी लोगों को पराजित किए और पराजित करके लेकर के चले गए। तो इसी को इस टीका में लिखते हुए कहते हैं कि सुतात्रयम् स्वयंवरे, काशीराज की तीनों कन्याओं को स्वयंवर से जीतवा जीत करके विचित्र वीर्याय भ्राते दत्तम। उन्होंने वहां पर घोषणा किया कि देखो सबसे अच्छा यह माना जाता है, सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह को कहा गया है। तो सभी लोगों को आश्चर्य हुआ था कि भीष्म पितामह जी यहां कैसे आ गए। तो कहते हैं कि सबसे तो उत्तम है, पहले का नियम था कि कन्याओं का विवाह माता पिता करते थे, माता पिता के अनुमति से विवाह होता था, लेकिन यह क्षत्रियों का धर्म है स्वयंवर करना। तो स्वयंवर में भी जो उत्तम होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो महान होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस स्वयंवर से उस कन्या को लेकर के, और योग्य जो वीर होता है, योद्धा होता है, जो उसके लायक होता है, उसके साथ में विवाह किया जाता है। तो भीष्म पितामह जी उन तीनों कन्याओं को वहां से पराजित करके, सब राजाओं को, और ले करके गए और ले जा करके विचित्र वीर्य से विवाह करना चाहते हैं, विचित्र वीर्य को देना चाहते हैं। विचित्र वीर्य कौन है तो उनके भाई हैं, जिनका जन्म सत्यवती के द्वारा हुआ है। तो भ्रात्रे दत्तम, लेकिन जब ले करके आए और तीनों कन्याओं को स्थापित किए, रखे वहां पर, तो उसमें से जो अम्बा थी, जो बड़ी लड़की थी, वह कह रही है अम्बा वाच, अम्बा बोलना प्रारंभ करती है कि मया तो मनसा पूर्वमेव शाल्वो वृतो अतः, मैं तो पहले ही अपने मन से शाल्व को वरण कर चुके हूं और शाल्व भी मुझे चाहते हैं, मैं शाल्व को चाहती हूं और शाल्व मुझे चाहते हैं। अतः न अहम एनम वरिष्यति थी, इसलिए मैं इनको वरण नहीं कर सकती हूं, मैं विचित्र वीर्य को स्वीकार नहीं कर सकती हूं। तो इसको सुन करके भीष्म पितामह जी आदर के साथ में, सम्मान के साथ में उस अम्बा को भेज देते हैं, जिस प्रकार लाए थे एकदम सम्मान के साथ में भेज रहे हैं। तदा भीष्मेण सा तत्र प्रेषिता, भीष्म के द्वारा, भीष्म पितामह के द्वारा भेजे जाने पर सच तमागतम विक्षम नाहम भीष्मार्जिता। जब वह साल्व के पास में आई तो साल्व कहते हैं कि न अहम, मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। देखिए जब अम्बा रिटर्न होकर के आई, लौट करके आई, तब साल्व कहते हैं कि अहम न, मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा कि विस्माजिताम बरिशे, भीष्म के द्वारा आप जीती जा चुकी हो, सभी राजाओं को परास्त करके भीष्म पितामह जी ले गए थे, तो भीष्म पितामह के द्वारा जीते जाने के कारण अहम न बरिशे, मैं आपको वरण नहीं करूंगा, मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। ततः तमेव गच्छ, आप कृपा करके उन्हीं के पास में चले जाइए, भीष्म पितामह जी के पास में आप चले जाइए। अब देखिए इस तरह की स्थिति को जब अम्बा सुनी तो अम्बा क्या करती है कि सा च पुनः आगत्यो वाचः, वह पुनः भीष्म पितामह के पास में आ गई। और जब भीष्म पितामह के पास आई तो भीष्म त्व जिताम माम सल्वो न गृहीत, हे महाराज आपके द्वारा जीते जाने के कारण महाराज साल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अतः तम एव माम गृहाण, इसलिए कृपा करके आप मुझे स्वीकार कीजिए। मैं कथानक रूप में सबको बता दूंगा, इसमें बहुत कथा है इसलिए ये बताना पड़ रहा है। हिंदी में भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर आचार्य लोग टीका लिखे हैं, तो मैं सोचा कि इसी को बता देता हूं। तो कहते हैं कि कृपा करके आप मुझे स्वीकार कीजिए, अतः तम एव माम गृहाण, आप मुझे स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। परंतु सह प्रवाच न च अन्य मनसम ग्रहिष्ये। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि देखो, अगर कोई मन से भी दूसरे को स्वीकार कर लेता है तो हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, और आप तो साल्व में अपने मन को लगा चुकी हो और साल्व भी आपके प्रति अपने मन को लगा चुके हैं, तो हमारी बात क्या? आपको अब मैं अपने भाई के साथ भी विवाह नहीं कर सकता हूं, और हमारी जहां बात है तो मैं तो पहले से ही प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मुझे विवाह नहीं करना है। जहां भाई की बात रही तो मैं भाई को भी नहीं दे सकता हूं। इस तरह के बात को सुन करके अब अंबा दुखी हो गई, और दुखी होकर के क्या की कि सीधे तदा सा ऋषि मंडलम आगत्य, वह ऋषियों के आश्रम में आ गई, जहां संत महात्मा ऋषि लोग थे, ऋषियों के पास में पहुंच गई। और जब ऋषियों के पास में गई तो ऋषि लोग सुने तो ऋषि लोग कहे कि देखो बेटी, तुम यहां मत रहो, तुम अपने पिता के यहां चली जाओ, पिता के यहां जाना चाहिए। तो कही कि नहीं नहीं, मैं अपने पिता के यहां नहीं जा सकती हूं। तो उन ऋषियों में एक ऋषि थे जिनका नाम था अकृत वर्ण। अकृत वर्ण क्या किए कि जो अंबा के नाना जी थे जिनका नाम था होत्रवाहन, होत्रवाहन के वो नाती लगती थी और अंबा के वो नाना लगते थे, तो उनके पास में जब गई तो अपने गोद में ले ली अपने पोती को, और लेने के बाद में वहां पर अकृत वर्ण जी आते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आपसे परशुराम जी मिलना चाहते हैं, आपके यहां परशुराम जी भेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो इसे सुनकर के वो बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, और इसके बाद में जब परशुराम जी आए तो परशुराम जी के पास में वह अंबा भी बैठी हुई थी। तो वो क्या की कि परशुराम जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहती है, तद गुरुम परशुरामम याचितवती। जो भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी हैं उनके चरणों में प्रार्थना की, और प्रार्थना करके कहती है कि हे भगवान, आपका जो शिष्य भीष्म पितामह हैं वो मुझे स्वीकार नहीं किए, और उन्हीं के कारण आज सालों भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो कृपा करके आप अपने शिष्य को समझाइए। गुरु के पास में पहुंच गई तो परशुराम जी कहे कि आप चिंता मत करो, स्व शिष्य भिष्या हम त्वम दास्यामी इति वाच। कहे कि मैं अपने शिष्य भीष्म के पास में जाता हूं और भीष्म को कहूंगा, भीष्म अवश्य ही तुम्हें स्वीकार करेंगे, क्योंकि वह मेरे शिष्य हैं। मैं अपने शिष्य से कहता हूं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ततः ताम गृहीत्वा रामो भीष्मम आगतो वाच। परशुराम जी क्या किए कि अपने साथ उस अंबा को लेकर के आए और आकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे, और पहुंच करके कहते हैं कि भो शिष्यो, हे मेरे शिष्य भीष्म पितामह, स्वजिताम एनाम त्वमेव गृहाण, आपके द्वारा अंबा जीती गई है, इसलिए कृपा करके आप इसको स्वीकार करो, आप इसको ग्रहण करो, क्योंकि तुमने इसको जीता है। तो भीष्म पितामह जी अपने गुरु के वचन को सुन करके, वाणी को सुन करके कहते हैं कि सचो वाच। वो बोलना प्रारंभ किए, भगवान माया पितु अर्थे विवाहम परित्याग। मैं अपने पिता के लिए विवाह का परित्याग कर दिया हूं, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। कृतो अतः नाहम प्रतिज्ञाहम, इसलिए मैं अपने प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता हूं आपके कहने से। आप कह रहे हैं विवाह करने के लिए, लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। और जहां हमारी बात है तो मेरे बात को तो छोड़ दीजिए। अन्य मनसम भ्राते पी नम दासे अहम, मैं अपने भाई को भी नहीं दे सकता हूं। भीष्म पितामह को लगा कि कहीं हमारे गुरुजी यह न कह दे कि आप अपने भाई के साथ विवाह कर दो, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोगों के कुल की परंपरा है कि जिस स्त्री का मन किसी दूसरे में लग गया उसके साथ में विवाह नहीं किया जाता है, तो मैं अपने भाई को भी नहीं दे सकता हूं। इस बात को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो गए। अपने शिष्य के वचन को सुनकर के, बाणी को सुनकर के, श्रुत्वा कुपितो राम, परशुराम जी क्रोधित होकर के बोलना चालू किए कि तुम अगर स्वीकार नहीं करोगे, मद बचना आदेनाम गृहाणम अन्यथा, मेरे वचन का पालन करो, मेरे आदेश को स्वीकार करो, और नहीं तो तुमको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह जी कहे कि गुरुदेव, युद्ध स्वीकार है लेकिन विवाह स्वीकार नहीं है। मैं युद्ध करूंगा लेकिन विवाह नहीं करूंगा। अब युद्ध करने के लिए दोनों गुरु शिष्य, भीष्मो भगवत युद्धम त्वया सकरिषे, हे भगवान मैं आपके साथ में युद्ध अवश्य ही करूंगा लेकिन विवाह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तो ऐसे कैसे कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा। और युद्ध कहां करना है, तो कहते हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के भूमि में हम लोग युद्ध करेंगे। तो गुरु और शिष्य में एक विंशति दिनम यावद युद्धम कृत्वा, 21 दिन तक युद्ध करते रहे, एक दो दिन नहीं, दोनों में एक विंशति 21 दिन तक युद्ध चला। और जब युद्ध हुआ तो राम भीष्मो जीतवान, भीष्म पितामह ने राम से जीत गए अथवा परशुराम को पराजित कर दिए, हरा दिए। तो इसको देख करके परशुराम जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए अपने शिष्य को देख करके। जब युद्ध करने के लिए पहुंचे थे तो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और अपने गुरु के चरणों में जाकर के भीष्म पितामह प्रणाम किए और प्रणाम करके कहे कि हे गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं विजय को प्राप्त हों, मैं जीत जाऊं। तो परशुराम जी कहते हैं कि देखो, मैं भी युद्ध करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं तुमको यह आशीर्वाद नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे वीरता को और तुम्हारे दैन्यता को, तुम मेरे चरणों में आकर के प्रणाम किया, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि उत्साह में रहना युद्ध करते समय। देखिए गुरु लोग किस प्रकार कृपा दृष्टि बरसाते हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा शिष्य जीत जाए, लेकिन अब युद्ध करने के लिए आए हैं इसलिए इस प्रकार का आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तो जब भीष्म पितामह विजय को प्राप्त हुए तो परशुराम जी वहां से चले गए। और इधर क्या हुआ कि इधर जो अंबा को पता चला कि अब परशुराम जी पराजित हो चुके हैं, तो सा च वनम गत्वा, वो भी एकांत में जाकर के तपस्या करने लगी और वहीं बाद में शिखंडी बनी, शिखंडी भूत्वा, वही अंबा शिखंडी हुई और वो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भीष्म पितामह को पराजित करके ही मानूंगी। तो भीष्मम महाभारत युद्धे मारिवान, अंत में उसी शिखंडी के कारण भीष्म पितामह मारे गए, पराजित हुए। तो इसके बाद में आगे प्रश्न होता है कि सत्यवती किस प्रकार व्यास देव की मां बनी। इन सब श्लोकों का यही भाव है, किस प्रकार आगे चल करके प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बात लिखे हैं, इसको हम लोग सुनेंगे। तो कहते हैं कि वो कैसे व्यास देव की मां बनी, तो इसको बताते हुए कहते हैं कि देखो, एक बार की बात है, सत्यवती का अभी विवाह नहीं हुआ था, वो कुमारावस्था की थी। तो एक समय क्या हुआ कि नदी के किनारे यमुना के किनारे वो बैठी हुई थी नौका में, उसी समय पराशर जी आए। और जब पराशर जी आते हैं तो पराशर जी क्या किए कि उस नौका में बैठ गए और उसके सुंदर रूप को देख रहे हैं। और उस समय बहुत अच्छा मुहूर्त था, तो पराशर जी के मन में हुआ कि अगर इस समय इसके साथ अगर सहवास किया जाता है तो इससे भगवान के ही अंश का जन्म होने वाला है, भगवान का ही अवतार आएंगे। इसलिए उन्होंने उनसे अपनी बात को कहा। तो इसको सुन करके सत्यवती जी घबरा गई और घबराते हुए कहते कि नहीं नहीं ऐसा, लेकिन वो कहे कि देवी तुम चिंता मत करो, तुमको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, यह मेरा वचन है। तो उस समय पराशर जी के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। द्वीप में जन्म लेने के कारण, वो नदी के किनारे द्वीप, द्वीप कहते हैं टीला को, टीला जैसा होता है, तो उसमें उसका जन्म हुआ। सत्यवती ने बच्चे को जन्म दी, इसलिए व्यास देव जी को द्वैपायन कहते हैं। द्वीप अयनम जस्य सह द्वैपायन, द्वीप ही अयन है जिसका, द्वीप ही घर है जिसका, इसलिए उनको द्वैपायन कहते हैं। और वह सांवले रंग के थे इसलिए उनको कृष्ण कहा गया, कृष्ण द्वैपायन। और व्यास नाम क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने विस्तार किया, ग्रंथों का विस्तार किया, महाभारत आदि इतिहास आदि को लिखे और अंत में भागवत को भी लिखे, तो इसलिए उनका नाम व्यास हुआ। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास। और उस समय पराशर जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया और इसके बाद कहा कि देखो तुम्हारे शरीर से सुंदर कमल के समान गंध निकलेगा। उनके आशीर्वाद से सत्यवती के शरीर से सुंदर कमल का सुगंध निकलता था, ये पराशर जी का आशीर्वाद था। इस प्रकार भगवान व्यास देव जी का तो जन्म हो गया, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चला, इसीलिए व्यास देव को कानिन भी कहा जाता है। कानिन उसको कहते हैं, कानिन पुत्र दो लोग हुए थे, एक व्यास देव जी और दूसरे कर्ण। विवाह से पहले जिसका जन्म हो जाए वो कानिन पुत्र कहलाते हैं। तो कर्ण का भी जन्म विवाह से पहले हुआ था और व्यास देव जी का भी जन्म विवाह से पहले हुआ है। तब यहां पूछ रहे हैं कि किस प्रकार व्यास माता सत्यवती को शांतनु जी ने स्वीकार किया। अब शांतनु जी किस तरह व्यास के माता, व्यास की माँ जो सत्यवती जी हैं, उनको शांतनु जी कैसे स्वीकार किए, कृपा करके आप हमको बताइए। तो इसको बताते हुए कहते हैं कि देखो एक बार की बात है, कदाचित एक समय स्वच्छंद विचरण करने वाले मृग का अन्वेषण करने वाले शांतनु जी कालिंदी तीरह यमुना के किनारे गए। और जब यमुना के किनारे गए तो वहां जाकर के देखते हैं एक सुंदरी स्त्री को देखे, जो अत्यंत अति सुंदरी है, अत्यंत मनोरमा है। उसको देख करके तद वपु गंध हृत चेतम, उनके सुंदर मुख को देख करके, सुंदर शरीर को देख करके उनका मन आकर्षित हुआ। और देखते हुए शंका करने लगे कि यह कौन देवी है, उनके शरीर अत्यंत मनोरम था, सुंदर था। और मन ही मन विचार करने लगे कि कहीं हमारी भार्या, कहीं हमारी पत्नी गंगा तो नहीं आ गई है मेरे परीक्षा लेने के लिए। तो इस प्रकार विचार कर रहे हैं, तद दर्शनात गंगा मनसा स्मरण का त्वम इति, क्या गंगा जी आ गई है क्या, इस प्रकार उनके मन में स्मरण होने लगा। और इसके बाद उसके पास गए और जा करके ताम प्रपक्ष उनसे पूछे, पूछते हैं, कहते हैं कि आप कौन हैं। तो जब इस प्रकार के बात पूछे तो वो कहती है कि दास कन्या हम, मैं एक दास की कन्या हूं। सत्यवती वास्तव में उपरिचर बसु नाम की पुत्री थी, मछली के गर्भ से उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसको एक मछुआरे ने पाले थे, अपने यहां ला करके उसका पालन पोषण किए थे। तो कहती है कि अहम दास कन्या हूं, मैं दास की कन्या हूं, मत पिता, मेरे पिताजी माम अत्र मुझको यहां रख दिया है कि तरीवाहनार्थम, इस नदी को पार करने के लिए नौका में मैं बैठी हूं, जो कोई व्यक्ति आता है उसको हम पार करती हैं, धर्मार्थ कार्यार्थम, धर्म कार्य के लिए मेरे पिताजी ने इस नौका को चलाते हैं, इससे उनका व्यवसाय भी चलता है, घर परिवार भी चलता है और धर्म के कार्य भी होता है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास में रुपया पैसा नहीं रहता था उसको भी वो पार करते थे, ये नहीं कि जो पैसा देते थे उसी को पार करते थे। धर्मार्थम का यह अर्थ है, केवल व्यवसाय के लिए नहीं, व्यवसाय तो गौण था, मुख्य यह था कि लोगों का कल्याण हो। तो इस समय मैं यहां पर उपस्थित हूं, तो मान लीजिए वो पूछे शांतनु जी कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो कहती है कि स्वगेहे गतो अधुना, अभी वह अपने घर चले गए हैं। तो इस तरह के बात सुन करके कहते हैं शांतनु जी कि हे देवी, देखो हमारी पत्नी गंगा मुझे छोड़ करके चली गई है, कृपा करके आप मुझे स्वीकार करो, आप मना मत करना, मैं आपको चाहता हूं, आप कृपा करके हमें स्वीकार कीजिए। तो इस तरह की बात को जब वह सुनी तो कहती है कि हे भगवान, देखिए हम लोगों का नियम है कि कन्या को पिता ही देते हैं, अगर आप मुझे चाहते हैं तो कृपा करके आप मेरे पिता के यहाँ जाइए और पिताजी से कहिए, हमसे मत कहिए, अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे पिता के यहाँ जाइए। तो इस तरह के बात को सुन करके तक श्रुत्वा, उसको सुन करके सन रिपो दास गेहम, इस तरह के बात सुने और सुन करके महाराज उस मत्स्य के पालन करने वाले उस सत्यवती के पिता के यहाँ चले गए और जा करके उनसे प्रार्थना किए। उनको देख करके बहुत खुश हुए और खुश होकर के कहते हैं कि मम दरिद्रस्य गेहम कथम श्रीमत, हे श्रीमान आप मेरे दरिद्र के यहाँ कैसे आए हैं, मेरे गरीब के यहाँ कैसे आए हैं, आपके आगमन का क्या कारण है, किस कारण से आप आए हैं। ततो राजा तम त्वम मह्यम निज पुत्रिम देही इति उवाच, इस तरह के बात को जब महाराज शांतनु ने सुना तो शांतनु महाराज कहे कि हे महाराज, कृपा करके आप अपनी पुत्री को मुझे दे दो, मैं आपके पुत्री के साथ में विवाह करना चाहता हूं। तो इस बात को सुन करके ततो दासः प्रभत्वम दृशो बरो ममा भाग्ये न लभ्यते, हे महाराज आपको हमारी पुत्री प्राप्त हो अथवा आप हमारे पुत्री के लिए प्राप्त हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे पुत्री को स्वीकार करेंगे, आप जैसे महाराज के पास हमारी बेटी जाएगी इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा, परंतु एक शर्त है। तो कहे हाँ बोलो क्या शर्त है, तो कहते हैं कि माँ मैकाम विज्ञापितम इति ताम श्रुत्वा में वह गृहाणम, मैं जो कहना चाहता हूं इसको आप सुनिए, अगर इस शर्त को आप स्वीकार करते हैं तो मैं अवश्य ही अपनी पुत्री को आपको दूंगा। तो कहे कि हाँ बोलो, तो कहते हैं कि देखो मत पुत्री पुत्र में यदि राज्य भी सिंचे, अगर मेरी बेटी का जो बेटा होगा जो लड़का होगा उसको अगर तुम राजा बनाओगे तब मैं अपने पुत्री को आपको दूंगा। अब देखिए इस तरह के बात को जब शांतनु महाराज सुने तो सुन करके तद एनाम गृहाण इति दासः प्रवाचः, उस दास के बात को जब सुने शांतनु महाराज तब विचार करने लगे मन ही मन कि तक श्रुत्वा गांगेयम राज्याधिकारिणम मनसा स्मृत्वाम गेहम राजा यऊ, जिस गंगा पुत्र भीष्म के कारण गंगा का त्याग किया और उस भीष्म पितामह को राजा न बनाऊं, इसके पुत्र को राजा बनाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए उनके शर्त को अस्वीकार नहीं किए। कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, सत्यवती को प्राप्त करने के लिए मैं भीष्म पितामह का त्याग नहीं कर सकता हूं। भीष्म पितामह को गंगा जी जब डालने के लिए चली तो शांतनु महाराज रोक लिए, कहे कि नहीं नहीं इसको नहीं डाल सकती हो, तो उनको छोड़ करके चली गई। और आज भीष्म पितामह को छोड़ करके मैं इसके द्वारा जन्म लिए हुए बच्चा को राजा बनाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो शांतनु महाराज स्वीकार नहीं किए और अपने नगर के लिए लौट आए, चले आए। लेकिन जब महाराज नगर में आए तब देखिए उनकी स्थिति क्या होती है। नगर में आए शांतनु महाराज तो आगत्य च भोजनादि त्यक्त्वा, अब उनको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, प्यास अच्छा नहीं लग रहा है, पानी नहीं पी रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं, बहुत दुखी हैं और शोकाकुल होकर के मौन धारण किए हुए हैं। इसको देख करके भीष्म पितामह जी, जिनका नाम देवव्रत है, देवव्रत बिल्कुल अपने पिता के पास गए और जाकर के कहे पिताजी क्या बात है, उदासी का कारण क्या है, आप कृपा करके हमसे बताइए, मैं सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। तो अपने बेटा से क्या बताएं कि मैं इस कारण से उदास हूं, कुछ नहीं बताए। और भीष्म पितामह बुद्धिमान थे और विचार करने लगे कि आखिर हमारे पिताजी उदास क्यों हैं, उदासी का कारण क्या है। तब वो क्या किए कि पता लगाने लगे, और जब पता लगाने लगे तो उनके जो मंत्री आदि थे उन लोगों के माध्यम से पता चल गया कि उदासी का कारण यह है, सत्यवती के पिता ने इस तरह का शर्त रख दिया है। तो सीधे बिना शांतनु महाराज को बताए ही भीष्म पितामह वहां पहुंच गए और वहां जाकर के उनके चरणों में, जैसे भगवान राम अपने पिता के दुख को दूर करना चाहते हैं, भगवान राम को जब कैकेयी ने इस प्रकार कह दी थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को राज्य तिलक होना चाहिए, इस बात को सुन करके दशरथ जी कुछ नहीं कह पा रहे थे, और भगवान राम पता लगाते हुए गए और उनको जब पता चला तो अपने पिता के आज्ञा को स्वीकार कर जंगल में चले गए। ठीक उसी प्रकार रामादिवत तथा आकर्ण्य अपि सन किंचिन वाच, और मंत्रियों से पूछ करके सीधे वह वहां गए और जा करके कहते हैं कि स दास गेहम आगत्य, दास के घर आ करके कहते हैं कि मम पित्रे स्व पुत्री प्रपक्षेद इत्याह, आप कृपा करके अपनी पुत्री को मेरे पिताजी के लिए दे दीजिए महाराज। तो वो कहते हैं कि देखो तुम अपने पिता के लिए क्यों मांग रहे हो, तुम्हारे पिताजी वृद्ध भी हो चुके हैं, सच त्वम गृहाणम त्वद भूतो अस्या पुत्रो राजा भविष्यति, कृपा करके तुम इसको स्वीकार करो और इसके द्वारा जब लड़का होगा तो स्वाभाविक राजा हो जाएगा। इस तरह की बात जब कहते हैं तो कहते हैं कि नाहम दारी परिग्रहम करिष्य इति सत्य तद वचः, वहां पर वह प्रतिज्ञा किए, कहे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन में कभी किसी नारी को स्वीकार नहीं करूंगा, यह मेरा भीष्म प्रतिज्ञा है। और इस तरह के बात जब वह सुने तो प्रसन्न हो गए कि जब यह विवाह करेगा ही नहीं तो इसके कोई संतान होंगे नहीं, इसलिए वह दास राज स्वीकार किए उनके शर्त को और भीष्म पितामह को अपने बेटी को दिए और कहे कि ले जाइए अपने पिता के साथ इनका विवाह करा दीजिए। तब भीष्म पितामह जी लेकर के आए और ला करके अपने पिता के चरणों में उनको दिए। तो जब उसके साथ उनका संबंध हुआ और इस तरह के प्रतिज्ञा को, इस तरह के व्यवहार को जब शांतनु महाराज ने देखा तो शांतनु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, सुत कर्मणा तुष्ट, अपने पुत्र के कर्म से संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के तस्मयी उस भीष्म पितामह के लिए आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया कि स्वच्छंद मृत्यु यताम ददौ, आपको मैं वरदान देता हूं कि आप जब चाहोगे उसी समय आपकी मृत्यु होगी, आपके चाहे बिना मृत्यु नहीं आ सकती है। इस तरह का वरदान शांतनु महाराज ने दिया। तो यहां पर प्रश्न है कि किस प्रकार शांतनु महाराज ने व्यास देव के माता को स्वीकार किए थे। तो इस बात को बताते हुए आचार्यगण यहां पर लिखते हैं, आगे के कथा कहते हुए कह रहे हैं कि देखिए जो चित्रांगद है, तो चित्रांगद और विचित्र वीर दोनों जो भीष्म पितामह हरण करके लाए थे अंबिके और अंबालिके को, तो उन दोनों का विवाह विचित्र वीर्य से किया गया। तो यहां प्रश्न हो सकता है कि चित्रांगद और विचित्र वीर्य दोनों भाई थे, तो चित्रांगद की कथा क्या है। तो इसको बताते हुए कहते हैं कि देखिए चित्रांगद का वर्णन किया गया है कि चित्रांगद जब युवक हुए तो वो इतने घमंडी थे और इतने बलवान थे कि वो किसी भी राजा को अपने समान समझते नहीं थे। वो सबके साथ में तर्क वितर्क करते थे। एक दिन की बात है, यहाँ तक कि देवताओं को भी चैलेंज कर देते थे। तो एक दिन की बात है, चित्रांगद नाम का एक गंधर्व भी था। वह गंधर्व आया और आकर के कहा कि देखो तुम्हारा नाम और हमारा नाम दोनों का नाम एक ही है, चित्रांगद तुम्हारा भी नाम है और मेरा भी नाम है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि दोनों व्यक्ति का एक नाम रहे, इसलिए हम दोनों को युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करते हैं और युद्ध में जो जीत जाएगा वो अपने नाम को बदल देगा, चेंज कर देगा, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो चित्रांगद और चित्रांगद गंधर्व दोनों आपस में युद्ध किए और इस प्रकार युद्ध करते करते अंत में वो माया विद्या भी जानता था गंधर्व, बाणों के द्वारा तो पराजित नहीं कर पाया लेकिन मायावी होने के कारण, माया के कारण चित्रांगद को परास्त कर दिया, हरा दिया, तिरस्कार कर दिया, उनको मार दिया। तो जब वह लड़ाई में मारे गए और युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे सब युद्ध हुआ था, तो वहां पर मारे गए और मारे जाने के कारण अब भीष्म पितामह ने उनके जो पितर कार्य होना चाहिए, मृत्यु के बाद जो कार्य होता है उसको भीष्म पितामह ने संपन्न किया। तो जब चित्रांगद की मृत्यु हो गई उस समय विचित्र वीर्य भी अभी बहुत बड़े उम्र के नहीं थे लेकिन उनको राजा बनाया गया, भीष्म पितामह उनको राज सिंहासन पर बैठा दिए और राज सिंहासन पर बैठा करके राज्य स्वयं देखा करते थे, राज्य कैसे चलाना है, क्या करना है, सब कुछ भीष्म पितामह करते थे लेकिन राज्य सिंहासन पर विचित्र वीर्य को बैठाए हुए थे। तो विचित्र वीर्य के साथ में जब काशी नरेश की पुत्रियों को लेकर के आए थे, अम्बा तो उधर शिखंडी बन गई लेकिन दो जो कन्या थी जिसका नाम है अंबिके और अंबालिके, उन दोनों कन्याओं का विवाह भीष्म पितामह ने अपने भाई विचित्र वीर्य से किया। और विचित्र वीर्य से जब विवाह किए तो हुआ क्या कि विचित्र वीर्य जी उन दोनों के साथ 7 वर्ष तक वह उन दोनों कन्याओं के साथ में विहार किया, परंतु असंयम के कारण अपने इंद्रियों के वश में न रखने कारण, असंयम के कारण वह जुआ अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनको क्षय रोग हो गया था और क्षय रोग होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तब क्या हुआ कि अब कोई संतान नहीं थे, कोई लड़के नहीं थे, अब माता सत्यवती घबरा गई और माता सत्यवती घबरा करके भीष्म पितामह को बुलाई और भीष्म पितामह को बुलाकर कहती है कि हे महाराज, आप कृपा करके अंबिके और अंबालिके के द्वारा कोई उपाय कीजिए पुत्र के लिए। तो भीष्म पितामह सोचने लगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो माता सत्यवती उस गोपनीय रहस्य को बताती है जो युवा अवस्था में कुमारा अवस्था में जो कन्या को जो पुत्र को प्राप्त की थी उस बात को बताती है। कहती है कि देखिए मेरे गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है और उससे जाकर के आप प्रार्थना कीजिए, आप कहिए कृपा करके आप किसी तरह इन दोनों के द्वारा पुत्र उत्पन्न करने की बात कहिए। तब भीष्म पितामह जी सीधे व्यास देव जी के पास में गए और व्यास देव के पास जा करके उनसे प्रार्थना किए। तब व्यास देव जी वहां आते हैं, मनुस्मृति में श्लोक आता है कि नियोग विधि को जानने वाला संयमी पुरुष जो है वह पुत्र उत्पन्न कर सकता है। विधवायाम नियुक्तस्तु धृक्ताक्तो वाग्यतो निशी एकम उत्पादेते पुत्रम न द्वितीयम कथंचन। कहा गया है कि उस स्थिति में विधवा स्त्री के साथ सहवास के लिए पति पक्ष गुरुजन के द्वारा अगर नियुक्त किया गया है तो पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन शरीर को बिगाड़ करके सुंदर रूप में नहीं जाना है। और उस स्त्री के साथ में एक ही पुत्र आप उत्पन्न कर सकते हैं और इसके बाद में उसको पुत्री के तरह व्यवहार करना पड़ेगा। तो इस बात को व्यास देव जी जानते हैं। व्यास देव जी माता सत्यवती के पास में आए। जब व्यास देव का जन्म हुआ था तो उस समय माता से कहे थे कि माँ तुमको जब भी जरूरत हो आप हमको बुला सकती हो। तो आज माता सत्यवती ने याद की और याद करने के बाद में व्यास देव जी आए और आकर के कहे कि ठीक है, अगर आप पुत्र उत्पन्न कराना चाहती हो तो एक साल तक इन लोगों को व्रत धारण करना पड़ेगा। तो माता घबरा कर कही कि बेटा इतना समय कहाँ है, देखो राज्य में कोई नहीं है, कृपा करके इसको आप जितना जल्दी हो करो। तब कहे कि ठीक है, लेकिन ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के जब वो लोग एकांत में आकर के बैठेंगी उस समय मैं आऊँगा और मैं पुत्र उत्पन्न करूँगा। तो सबसे पहले माता सत्यवती अंबिके से कही कि आप जाइए। तो अंबिका जी सुंदर ढंग से जाती हैं, लेकिन व्यास देव जी को जब देखी, व्यास देव जी का जो रूप है कृष्ण वर्ण का है और भी अपने रूप को थोड़ा भयंकर बनाए हुए हैं, बाल बिखरा हुआ है, नेत्र लाल है और इस प्रकार अपने शरीर में घृत लगाए हुए हैं। इस तरह के रूप को देख करके वो आने को तो आई, लेकिन उनके सामने आते ही अपने नेत्र को बंद कर ली और जब ही नेत्र बंद की तो व्यास देव जी फिर कहे कि ठीक है अब जाओ। माता सत्यवती पूछी कि बेटा पुत्र इनके द्वारा कैसा होगा? तो कहे कि लड़का होगा लेकिन वो अंधा होगा, बलवान होगा, वीर्य होगा लेकिन वह अंधा होगा। तब वो घबरा गई, कही कि बेटा नहीं, फिर तो इससे ठीक नहीं रहेगा, फिर मुझे पुत्र चाहिए। तो इस बार अम्बालिका को भेजी और जब अम्बालिका को भेजती हैं तो अम्बालिका गई, लेकिन उनके सामने जाते ही वह अपने शरीर को एकदम बिल्कुल ऐसा की कि वह शरीर पित्त हो गया, पांडु रंग का हो गया। और व्यास देव जी के पास जब जाती है तो व्यास देव जी फिर उनके साथ में समागम जो भी था इसके बाद उसको भेजे। जब माता सत्यवती पूछती है तो कहे कि लड़का तो होगा लेकिन पांडु ग्रस्त होगा और उसका नाम भी पांडु होगा। तब वो कही कि फिर दुखी हो गई, कही कि बेटा ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा पुत्र चाहिए जिसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तब फिर वह पुनः सत्यवती जी अंबिके से कही कि बेटी तुम इस बार फिर जाओ व्यासदेव के पास। तो वहां तो हाँ बोल दी, लेकिन जब माता सत्यवती वहां से चली गई तो घबरा गई, कही कि मैं नहीं जाऊंगी और अपनी दासी जो विचित्र वीर जी की दासी थी उसको भेजी, कही कि आप जाओ। और वह गई तो वह किसी प्रकार का संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई भय नहीं और आनंद के साथ में मुस्कुराते हुए जाती हैं प्रसन्न होकर के और व्यास देव जी के चरणों में प्रणाम करती हैं, सेवा करती हैं। तो उस दासी के द्वारा जो पुत्र हुआ वो अत्यंत सुंदर और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था उनमें, उनका नाम हुआ विदुर जी। तो यहाँ मनुस्मृति में वर्णन है कि विधवायाम नियोगार्थे निवृत्ते तु यथाविधि गुरु वह च सनुषा च वर्ते याताम परस्परम। विधवा नियोग के लिए विधि के अनुसार अर्थात काम वश न होकर के कर्तव्य बुद्धि से चित्त को संयमित और इंद्रियों को अनासक्त रखते हुए नियोग का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर दोनों परस्पर पिता और पुत्री की तरह व्यवहार करें। तो यह नियम है, लेकिन यह कलयुगी जीवों के लिए नहीं है। यहाँ प्रभुपाद भी लिखे हैं तात्पर्य में कि अश्वमेधम गवालभ्यम संन्यासम पल पैतृकम देववेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। इस कलयुग में पांच कार्य करने के लिए मना किया गया है, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास आश्रम और पूर्वजों को जो पहले मांस आदि भेंट देते थे उनको, और देवर के द्वारा भाभी से पुत्र उत्पत्ति, इसको मना किया गया है। तो इस तरह बात को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे की कथा भी बताए हैं कि देखिए हमारे पिताजी इस भागवत को मुझे सुनाए, क्योंकि मैं सहनशील विरक्त सब तरह से योग्य देखते हुए, ऐसे तो मैं उनके पुत्र था, पहल आदि जो उनके शिष्य थे उनको नहीं समझाए, लेकिन मुझको भागवत पढ़ाया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी में सारी योग्यता थी भागवत पढ़ने की। और वास्तव में भागवत पढ़ने का अधिकारी, सुनने का अधिकारी जो जितना ही सहनशील, गुरु आज्ञापरायण, प्रभुपाद के आदेश को पालन करते हुए जो इस भागवत को पढ़ते हैं तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवत पढ़ाया। सुखदेव गोस्वामी के विषय में आप लोग सुने हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी जंगल के लिए चले गए थे। यम प्रव्रजन तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मे। सुखदेव गोस्वामी जंगल के लिए चले गए थे, लेकिन व्यास देव जी को बहुत दुख था कि मैं कैसे अपने बेटा को पढ़ाऊं। तो बाद में व्यास देव जी ने अपने शिष्यों को भेजा, भागवत के महत्वपूर्ण कुछ श्लोकों को दिए और उन श्लोकों को गाते हुए शिष्य लोग गए थे, जिसमें एक अहो बकियम स्तनकाल कूटम और बरहा पीडम नटवर वपु, इन श्लोकों को जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो जो सुखदेव गोस्वामी आत्मा राम हैं, अपने आप में रमण करने वाले आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाय पिरुक्रमे कुर्वंती अहेतुकी भक्ति में इथम भूत गुणो हरि, भगवान के गुण को सुन करके दौड़ते हुए आए और अपने पिता के चरणों में बैठ करके भागवत का अध्ययन किया, भागवत को पढ़ा। तो योग्य पात्र देह करके, यह नहीं कि अपने पुत्र को केवल पुत्र भाव में होकर के पढ़ाए, योग्यता को देखते हुए व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। तो इस प्रकार ये सब कथा है जिसका वर्णन मैं अति संक्षेप में यहाँ पर किया। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। ठीक है, हरे कृष्ण।